मैंने अर्ज किया शुरू, हम लोग तो वो जिसको हम लोग कहते हैं नकी नहीं है, इतने साफ सुथरे नहीं है, पाकिजा नहीं है, तो हम चूंकि दुनियादारी के बदतरीन दौर में फंसे हुए हैं। ये 60s के टाइम से कुछ स्कॉलर्स थे दुनिया में जो समझ गए थे कि जिस मादा परस्ती में अब हम फंसे हैं, तारीख बशरियत कभी ऐसी मादा परस्ती में नहीं फंसी थी। 60s में स्कॉलर्स समझना शुरू हो गए थे, इस्लाम तो खैर कब से कह रहा था, लेकिन दुनिया के भी स्कॉलर्स समझ गए थे 60s के बाद से, जो सोशल साइंसेज की डेवलपमेंट हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो वो समझ गए थे कि हम लोग अब मादा परस्ती में फंस गए, अब हम इससे नहीं निकलेंगे। अब उस टाइम से 60 साल और इधर आ गए हम लोग, तो अब तो मेरे ख्याल में अंधे को भी नज़र आ रहा है कि हम कहाँ फंस गए, ना रिश्ते रहे, ना नाते रहे, ना एहतराम रहा, ना तकद्दस रहा, अब जो कुछ रह गया है वो सिर्फ और सिर्फ लज्जात, ख्वाहिशात, मादा परस्ती। हम इस बुरे दौर के अंदर फंस गए। अब इस बुरे दौर के अंदर कोई हमें अमीरुल मोमिनीन का कलाम सुनाए और मैं सुनूं और पढ़ूं तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करूं इसके साथ, क्योंकि वो तो दुनियादारी के साथ साजगार नहीं है, वो तो मान ही नहीं रहा है दुनिया को। ये जो मकतूब है ये 69 नंबर है, 68 नंबर शायद मैंने पहले दिन ये कहा था, वो अब्दुल्ला बिन अब्बास को तो नहीं, वो अब्दुल्ला बिन अब्बास को नहीं, वो हज़रत सलमान फारसी को है। 68 नंबर हज़रत सलमान फारसी को है, ज़रा देखिएगा एक दफ़ा जाकर उसे, मौका नहीं कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। इमाम हज़रत सलमान फारसी से कहते हैं, सलमान दुनिया से जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगने लगे ना उसे फ़ौरन छोड़ देना। या अल्लाह, दुनिया से जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगने लगे इसे फ़ौरन छोड़ देना, क्यों? ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह होने वाली है। क्यों? क्योंकि दुनिया हायल है। अगर मैं दुनिया की एक चीज़ को पसंद करने बैठ गया तो ये यकीनन मुझे अंधा करेगी। तो इमाम फरमा रहे, अगर तुम्हें कोई चीज़ अच्छी लगे ना, पहले तो दुनिया से कोई चीज़ पसंद ना करना, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ इस काबिल नहीं जिसको तुम पसंद करके बैठो और तुम उसके ऊपर मरो। फिर अगर पसंद आने लगे, तुम्हारी कमज़ोरी बनने लगे, फ़ौरन उसको निकाल देना। आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी मरने से कुछ दिन पहले या मसलन हफ्ते भर पहले उनके सिरहाने कुछ किताबें रखी थीं। आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी किताबों के आशिक थे। जो हम हमारी दुनिया में दौलत का कोई आशिक होगा, शोहरत का आशिक होगा और लज्जात का आशिक होगा, तो आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी किताबों के आशिक थे। रोज़े रख रख के किताबें ख़रीदते थे अपने तालिबे इल्मी के ज़माने में। तो कुछ किताबें थीं उनको इतनी पसंद थीं, इतनी पसंद थीं, वो उन्होंने किताब खाने को भी डोनेट नहीं की, लाइब्रेरी को भी नहीं दी, बाकी जो सारी किताबें लाइब्रेरी को दे दी थी। वो चंद किताबें उनको इतनी पसंद थीं, वो अपने सिरहाने रखते थे हमेशा। मरने से हफ्ते भर पहले तकरीबन इतना कुछ कमो बेश वो किताबें भी लाइब्रेरी को डोनेट कर दी, कहा इनको यहाँ से उठा लो और दे दो किताब खाने को। तो जो था, जो भी साथ थे, उनके फर्जंद थे, कोई भी थे, उन्होंने कहा आगा साहब अब तो आप दुनिया से जा ही रहे हैं, आप चले जाएं, इनको यहाँ रहने दें, आपके मरने के बाद मैं दे दूंगा इसको किताब खाने को। कहानी, मैं नहीं चाहता मरते वक्त मुझे दुनिया की कोई भी पसंदीदा चीज़ सामने नज़र आए, इसको भी निकाल दो। क्या पता इसी की पसंद की वजह से मैं फंस जाऊँ कि मैं दुनिया से कोई चीज़ पसंद करके जा रहा हूँ, इसको भी दे दो कहीं, मुझसे जान छुड़वाओ इसकी, ये मुझे नहीं चाहिए। इन लोगों ने इतनी मेहनत की है तब ये लोग ये बने हैं। हम लोग चाह रहे हैं अपनी नफ्सा नफसी के साथ, जो शोहरत तलबी, जो मादा परस्ती है, जो ख्वाहिशात की पैरवी, उन सब के साथ चलकर हम बहजत बनने वाले हैं, हम खुमैनी बनने वाले हैं। को कहाँ का ख्वाब है, कोई धोखा है क्या? वो तो इतनी मेहनत करें तब बने, और हम लोग फजूल के काम कर करके अपनी ज़िंदगी के अंदर फिर भी बन जाएंगे, कैसे बनेंगे? और नहीं बनेंगे, देखो ना हमने क्या हशर किया अपनी कौम का। अगर बच्चा बच्चा हमसे एक दूसरे से कह रहा है भाई कौम का शिराजा बिखरा हुआ है, तो शिराजा क्यों नहीं बिखरेगा? जब इतनी नफ्स परस्तियाँ करोगे तो बचेगा क्या फिर यहाँ पे? मैं दूसरों को नहीं कह रहा, अपने आप को भी कह रहा हूँ कि भाई इतनी नफ्स परस्तियों के साथ यही होना है फिर।